नमस्कार.
नमस्कार.
आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की महाशक्ति की लोक यात्रा.
जी बिल्कुल.
और खास तौर पर इसके एक अध्याय पर संचालन सामर्थ्य का लौकिक प्राकट्य. ये पुस्तक तो वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर है, जो गायत्री परिवार की सह संस्थापिका रही.
जी हाँ.
तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस अध्याय से वंदनीय माता जी की जो अद्भुत प्रबंधन क्षमता थी, उनका जो नेतृत्व था
जी,
उसे समझे, खासकर उस समय जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रवास पर थे.
हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय था. चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं.
तो ये घटना है गुरुदेव के दूसरे हिमालय प्रवास के समय की.
जी.
पहले प्रवास की तुलना में अब मिशन का स्वरूप काफी बदल चुका था, फैल चुका था.
हाँ, काफी विस्तार हो गया था.
गायत्री तपो भूमि बन चुकी थी, साधना शिविर वगैरह नियमित होने लगे थे. और खासकर जो 1958 का बड़ा सहस्रकुंडी यज्ञ हुआ.
हाँ, वो ऐतिहासिक था.
उसके बाद तो देशभर से बहुत प्रतिष्ठित लोग, बुद्धिजीवी, साधक सब आने लगे थे.
जी, आवाजाही बहुत बढ़ गई थी.
तो ऐसे में जाहिर है एक कुशल नेतृत्व की, एक संचालक की जरूरत तो थी.
बिल्कुल.
और जब गुरुदेव गए तो ये जिम्मेदारी आ गई वंदनीय माता जी पर.
हाँ.
और पुस्तक में जैसा बताया गया है, कुछ कार्यकर्ताओं को थोड़ी शंका थी.
अच्छा
जी. वो सोचते थे कि माता जी तो एकदम सीधी साधी गृहिणी जैसी दिखती हैं, वो इतने बड़े संगठन को, जो अब जटिल भी हो रहा था, कैसे संभाल पाएंगी. शायद उनकी वो व्यावहारिक कुशलता या जो उनकी आंतरिक दृष्टि थी, उससे परिचित नहीं थे लोग.
हाँ, या शायद उस समय की सोच भी ऐसी थी कि एक नारी नेतृत्व को लेकर सहज विश्वास नहीं बनता था.
हो सकता है. लेकिन गुरुदेव को तो पूरा विश्वास था,
अटूट विश्वास.
पुस्तक में लिखा भी है, उन्होंने जाने से पहले कहा था.
जी.
अरे, शंका करने वाले भला माताजी के बारे में जानते ही क्या हैं?
हाँ बिल्कुल.
उन्हें क्या मालूम माताजी कौन हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है.
और इसी भरोसे के साथ वो निश्चिंत होकर चले गए.
जी.
और माताजी ने फिर मोर्चा संभाला, और क्या खूब संभाला.
हाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई वगैरह.
जी हाँ.
और साथ ही मिशन का सारा काम, साधना, हजारों पत्र आते थे उनके जवाब देना, अखंड ज्योति पत्रिका का पूरा काम,
संपादन, प्रकाशन, सब कुछ,
तपोभूमि की पूरी व्यवस्था. और ये सब तब जब, जैसा आपने इशारा किया, सारे कार्यकर्ता पूरी तरह साथ भी नहीं थे.
हाँ, ये एक अहम बात है. पुस्तक संकेत देती है कि कुछ कार्यकर्ता थे, शायद माताजी के प्रति उनमें उतनी श्रद्धा नहीं थी या उनकी अपनी कुछ कमजोरियां थीं, तो वो सहयोग करने के बजाय मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, आपसी मतभेद, गुटबाजी, ऐसी चीजें भी.
अच्छा
जी. लेकिन माताजी वो सब जानती थीं, फिर भी उनके मन में उन सब के लिए करुणा थी.
यहीं पर उनकी खासियत दिखती है.
बिल्कुल. उनकी प्रतिक्रिया बहुत अलग थी, पारंपरिक नेतृत्व जैसी नहीं, और यही उनकी असली संचालन क्षमता दिखती है. एक घटना है इस बारे में.
हाँ, पुस्तक में एक बड़ा प्रभावशाली वर्णन है.
जी.
एक बार कार्यकर्ताओं में काफी झगड़ा हो गया, गंभीर मतभेद हो गए, तो माताजी को बीच में आना पड़ा.
जी.
उन्होंने सबको बुलाया.
जी.
और फिर जो हुआ वो कमाल का था.
हाँ.
उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.
नहीं, बिल्कुल नहीं.
लेकिन एक एक करके सबकी गलतियां गिना दी, किसने क्या आर्थिक गड़बड़ की, कौन क्या षड्यंत्र कर रहा था, सब कुछ.
हाँ, सब कुछ सामने रख दिया और सब लोग बस सिर झुकाए बैठे थे, शर्मिंदा,
स्तब्ध रह गए होंगे.
बिल्कुल. और तब उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ, पर मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को हर हाल में प्यार करती है.
जी.
चिंता मत करो, ये मिशन भगवान का है, इसे तो बढ़ना ही है.
क्या बात है.
और पुस्तक बताती है कि ये सुनकर कई लोग रो पड़े, माफी मांगी और माताजी ने सबको माफ कर दिया,
तुरंत क्षमा कर दिया.
हाँ. कुछ लोग शायद तब भी नहीं बदले पूरी तरह, लेकिन उन्हें भी माताजी की जो अलौकिक शक्ति थी, उनकी जानकारी की जो गहराई थी, उसका अंदाजा हो गया.
ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने सजा के बजाय करुणा और सत्य के एहसास से स्थिति को संभाला.
बिल्कुल.
फिर जब गुरुदेव लौटे प्रवास से, उन्हें सब पता चला.
हाँ, उन्हें तो पता चल ही गया.
तो स्वाभाविक है वो गुस्सा हुए होंगे, वो चाहते थे कि जिन लोगों ने गड़बड़ की उन पर कार्रवाई हो.
जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते थे.
पर यहाँ फिर से माताजी की ममता सामने आई.
अच्छा.
हाँ, उन्होंने गुरुदेव से उन कार्यकर्ताओं के लिए माफी मांगी.
अरे वाह.
इतना ही नहीं, ये भी कहा कि इनको जीवन में एक नया मौका मिलना चाहिए, जैसे उनके लिखे साहित्य के प्रकाशन अधिकार देकर उनकी आर्थिक मदद की जाए.
मतलब सिर्फ माफी नहीं बल्कि सुधार का रास्ता भी सुझाया. ये उनकी नेतृत्व शैली थी, सुधार और करुणा, सिर्फ निकालना नहीं.
तो गुरुदेव ने मान ली बात?
हाँ, उन्हें माननी पड़ी। पुस्तक में लिखा है, वो हंसकर बोले, आपकी ममता के सामने तो त्रिलोक के स्वामी को भी झुकना पड़ेगा, फिर मेरी क्या बिसात। तो जिन लोगों को अलग किया भी गया, वो भी मन में माताजी के लिए श्रद्धा और प्रेम लेकर ही गए।
और इस पूरी घटना ने मिशन को एक नई ऊर्जा दी।
बिल्कुल, और कहते हैं कि यहीं से शांति कुंज की स्थापना की पृष्ठभूमि भी बनी।
तो इस अध्याय से वंदनिया माताजी का नेतृत्व का एक बहुत ही विशिष्ट रूप सामने आता है।
जी बिल्कुल, जिसमें गहरी आंतरिक दृष्टि है, प्रभावी प्रबंधन है।
हाँ,
और साथ ही अपार करुणा और मातृत्व भी, एक अद्भुत संतुलन।
ये सिर्फ सत्ता या अधिकार वाला नेतृत्व नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये दिखाता है कि प्रेम, समझ और आध्यात्मिक शक्ति से भी नेतृत्व किया जा सकता है, और बहुत शक्तिशाली ढंग से।
सही कहा, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या वंदनीय माताजी जैसी जो करुणामय अंतर्दृष्टि वाली नेतृत्व शैली है, वो पारंपरिक तरीकों के लिए कोई चुनौती है या शायद एक पूरक बन सकती है?
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने वाली बात है।